च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्विजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो वदामि राधामरबिन्दनेत्रां वदामि राधामरबिन्दनेत्रां स्मरामि राधां मनोस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न आज बड़े आनंद की बात है कि यहाँ आज बॉम्बे शहर में राधा जी के जन्म उत्सव की बधाई का उत्सव होने जा रहा है। यद्यपि राधाष्टमी अभी कुछ ही दिनों में गई है, किंतु राधाष्टमी कभी जाती नहीं है, नित्य है। कभी भी किसी दिन भी प्रतिदिन भी राधा का जन्म महोत्सव और बधाई हो सकती है। हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, व्यास जी ने चारों वेदों का विभाग किया, हरेक शाम जजुर अधर्म पे, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ा। व्यास माने उसके अलग अलग भाग प्रस्तुत किए विषय के अनुसार। तत्पश्चात उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिस संप्रदाय में उसकी व्याख्या और टीकाएं न हों, तो उसको संप्रदाय ही नहीं माना गया। उन्होंने सब लोगों के लिए भक्ति को सुलभ करने के लिए महाभारत की रचना भी की, जिसमें स्त्री शूद्र इत्यादि सभी लोगों को अधिकार मिला भगवान का भजन करने का। तत्पश्चात पुराण सब उन्होंने लिखे, प्रकाश किए, तो भी उनके मन में शांति नहीं। न जाने क्यों उनके मन में ग्लानि कुछ है। वो बद्रिकाश्रम के पश्चात सम्याप्रस्थ स्थान में कुछ खिन्न से बैठे हुए थे। इतने में नारद ऋषि आए। नारद जी ने उनसे पूछा, तुमने भारतवर्ष में जो कुछ धर्म की बातें हैं आपने सब कुछ लिखी और प्रचार किया, आपको सबकी अनुभूतियां हैं, किंतु आपका मन प्रसन्न नहीं दिखता, आप खिन्न क्यों हैं? उन्होंने कहा, यही तो बात मैं सोच रहा था। मैंने सब कुछ किया, वेदों का भी भाग किया, मैंने ब्रह्म सूत्र लिखे, मैंने पुराणों को प्रकाश किया, महाभारत की रचना की, सब कुछ किया, किंतु मेरा मन प्रसन्न नहीं है। क्यों? आप वैद्य हैं, मैं नहीं जानता ये क्यों ऐसा हो रहा है। यद्यपि व्यास जी को नारायण कहा गया है, नारायण के अवतार हैं, किंतु फिर भी ऐसा कह रहे हैं। नारद जी जगत के गुरु हैं, अनुभवी पुरुष हैं, उन्होंने अपनी आराधना से भगवान को प्रसन्न किया है, इसलिए उन्होंने कहा, आपने सब कुछ किया, कृष्ण की महिमा भी आपने बतलाई, किंतु आपने सारी जनता को चौमाथे पर, चौराहे पर लेकर के खड़ा कर दिया। कभी आपने कहा कि गणेश ही समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, आपने कहीं भी बतलाया ये शंकर जी ही समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, कहीं कुछ बतलाया, कभी सबकी जननी को दुर्गा जी को बतलाया। आपने सटीक रूप में भगवत तत्व के संबंध में नहीं बतलाया, इसलिए आप अच्छी तरह से बतलाएं। जहीं कहीं आपने कृष्ण को भगवान बतलाया, जगत का आराध्य बतलाया, किंतु वो पूर्ण रूप से नहीं बतलाया। आपने कहीं ये बतलाया कि भगवान भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, आपने तो ये बतलाया श्री रामचंद्र जी मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, जगत में मर्यादा की रक्षा करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए आए। उन्होंने प्रतिष्ठा किया सीता जी को, उन्होंने एक धोबी के कहने से वनवास दे दिया। सारे जीवन के लिए उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में आपने उनको बताया, आपने मर्यादा तो दिखाई, किंतु सीता जी का दोष क्या था? क्या दोष था? मर्यादा आपने राम के रूप में दिखलाई और अवतारों में भी आपने दिखलाई, किंतु इस मर्यादा से भी प्रेम बड़ा है। आपने कृष्ण लीला का भी चरित्र का वर्णन किया है पद्म पुराण और सब पुराणों में। आपने वेदों में भी कृष्ण का नाम और राधा जी का दिया है, उनकी उपासना की बात बतलाई तो है, किंतु स्पष्ट रूप से आपने नहीं बतलाया। ये भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के किसी के पुत्र बन जाते हैं और उसकी मैया जसोदा जी और नंद जी उनको, उनके कान को उमेट देते हैं, उनको ओखल से बांध देते हैं, वह प्रेम में विवश होकर के रोने लगते हैं। पर ब्रह्म कहीं लिखा आपने? आपने ये कहीं लिखा? जो आपने ये तो लिखा कि हनुमान जी राम के बड़े भक्त हैं, ठीक है, किंतु हनुमान जी राम के साथ में खेल सकते हैं? कभी राम के कंधे पर हनुमान जी बैठ सकते हैं? अरे हनुमान जी की बात क्या, भरत जी शत्रुघ्न जी भी नहीं बैठ सकते? कभी जूठा खिला सकते हैं? सबरी ने जूठा नहीं खिलाया, उस पेड़ के फल उन्होंने खिलाए। जब सीता जी ही अपने जूठा नहीं खिला सकती हैं, उनको वनवास भेज सकते हैं, मर्यादा दिखलाया किंतु प्रेम की भूमिका नहीं दिखलाई। आपने कभी यह दिखलाया कि सखा लोग जैसे ब्रज में सीदाम सखा इत्यादि कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं, कृष्ण को अपना जूठा खिलाते हैं, अपना घोड़ा बना लेते हैं, दुलदुल करके चलने के लिए कहते हैं, कभी आपने लिखा? भगवान इसे प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। यशोदा मैया जी ने अपने प्रेम से कृष्ण को ओखल में बांध दिया और कृष्ण रो रहे हैं, ऐसा कभी दिखलाया? आपने ये कभी दिखलाया जो गोपियों के चरणों में प्रेम के लिए निहोरा करते हैं, प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, आपने कभी दिखलाया? बल्कि राम के चरित्र में तो ये देखा जाता है सीता जी को वनवास दे दिया, किंतु आपने ये दिखलाया कहीं कि यदि कृष्ण कभी कुछ गड़बड़ करते हैं प्रेम में तो राधा जी अपने कुंज से कृष्ण को निकाल देती हैं, कहते हैं कि हमारे कुंज में मत आना, और कृष्ण निहोरा करते हैं, पहिया पड़ते हैं सखियों के, राजा जी के दासियों के चरणों में। जतकिं करी सुबहुषा खलुका कुबानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदार सुनिधे विशुभानु जाया ततके निकुंज भवनांगन मार्जिन श्याम। आपने कहीं दिखलाया राधा जी कृष्ण के ऊपर में मान की हैं और कृष्ण कुंज के दरवाजे पर खड़े हों और राधा जी ने अपनी शक्तियों को कह दिया है दासियों को कुंज के द्वार पर खड़ा रहना और कभी काले को आने मत देना, उसका अंतर और बाहर दोनों काला है, प्रेम की मर्यादा नहीं जानता है, इसलिए उसको आज बाहर रखना, ऐसा कोई कह सकता है? राधा जी के अतिरिक्त कोई नहीं कह सकता है, गोपियों के अतिरिक्त कोई नहीं कह। आपने लीलाओं का वर्णन नहीं किया, आपने यही नहीं लिखा जो कृष्ण स्वयं उन्होंने कहा है, न पारे हम निर्वध संयुजांश साधु विद्या विबुधा जुषा पिब माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला समृक्ष तद्वत प्रतिजात साधना। हे मेरी प्यारी गोपियां, तुम्हारे प्रेम का मैं कोई ऋण उतार नहीं सकता, मैं तुम्हारा जन्म जन्म का ऋणी हूँ। आपने कहीं लिखा तो फिर लिखा क्या? कृष्ण की महिमा आपने क्या वर्णन किया? यही भगवान की चरम महत्ता है। आपने ये कहीं लिखा कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनकी आराध्या जो राधिका जी हैं वो सबकी आराध्या है, कहीं लिखा? मैंने तो नहीं लिखा। तो जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपके चित्त में शांति नहीं होगी। यही समस्त धर्मों का सार है, क्योंकि कृष्ण रसो वैसह है, रस के मूर्तिमान विग्रह हैं। रस के मूर्तिमान कैसे होंगे? जब तक राधा जी नहीं होंगे उनमें रस का संचार नहीं होगा, वो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म बने रहेंगे, निराकार ब्रह्म बने रहेंगे। इसलिए आप इन सब का अच्छी तरह से प्रकाश कीजिए जगत में। तब उन्होंने भक्ति योग के द्वारा भक्ति योगे इन मनसा सम्यक परिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण। उन्होंने भक्ति योग का आश्रय लिया, भक्ति को जो का आश्रय न माने क्या, मैं बहुत दीनहीन हूं, मैं कुछ नहीं जानता, जागतिक बुद्धि का विचार का कोई भी मूल्य नहीं है, ऐसी भावना आकर के संपूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पण यदि कोई करे और वो समझे कि निष्कपट हृदय से मेरा शरणागत हो रहा है, यहां से भक्ति का दरवाजा खुलता है। हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ध्यान किया बोध गया में, अपनी बुद्धि से लगा रहे हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, नहीं उनके समझ में आया, उन्होंने कह दिया ये जगत ब्रह्म है, जगत शून्य है, भगवान शून्य है, जगत का रचयिता कोई नहीं है, वेद झूठे हैं, क्योंकि मन से कल्पना से उन्होंने उनको जानना चाहा, इसलिए नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मार्गः। सब धर्मों को जलांजलि देकर, क्या धर्म, मन के और शरीर के जितने धर्म हैं, इससे भगवान नहीं मिलते, हम आत्मा हैं, वो आत्मा की आत्मा के भी आत्मा हैं। कृष्ण केवल वही नहीं, समस्त ईश्वरों के भी, समस्त परमेश्वरों के भी, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वालों के भी मूल उद्गम स्थान है। इस चीज को समझना चाहिए, समझ करके तन मन वचन वाणी भाव सबके द्वारा उनके शरणागत हो, अपने को तब रियलाइज करा देते हैं, अन्यथा नहीं कराएंगे, अपनी बुद्धि बातचीत इत्यादि से उनको कोई नहीं जान सकता। इसलिए व्यास देव जी ने कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। और जैसे कि एक शब्द है प्रचोदयात गायत्री में भी और सब गायत्री में भी, प्रचोदयात, आप कृपा करके हमारा हृदय निर्मल करके अपने आप हमारे हृदय में उदित होइए, ये मंत्रों का सार है गायत्री इत्यादि सबका। हम जो अपने मन से जो कल्पना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ध्यान और ये नहीं। इसलिए कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीलाएं जो ब्रज में प्रकट ही जन्म से लेकर के द्वारका लीला के अंतर ध्यान तक सारी लीलाओं का प्रत्यक्षवत जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, ऐसे अपने मन में अपने समाधि से अपनी आत्मा में उन्होंने सब लीलाओं का दर्शन किया। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो गोकुल में गए, कैसे गोकुल में उनकी लीलाएं हुई, कैसे वृंदावन में रासलीलाएं हुई, कैसे भ्रमर गीत हुआ, गोपी गीत हुआ, और कैसे ये प्रेम को उन्होंने प्रकाशित किया, सारी लीलाओं को उन्होंने मन में दर्शन किए और फिर समाधि की भाषा को श्रीमद् भागवत में उन्होंने प्रकाश किया। इसलिए श्रीमद् भागवत संसार का वेदों का भी सार है। निगम कल्प तरुर गलितंग फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पियोत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। ये श्रीमद् भागवत वेद सारे जितने वेद निगम हैं उसका प्रपक्व बिना गुठली बिना किसी असार वस्तु का एकदम रसमय ग्रंथ है। जो भागवत को नहीं पढ़े, जो भागवत का विवेचन नहीं किया और भागवत के अनुसार में राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, विशेष करके राधा जी का आश्रय नहीं लिया, उनका जन्म वृथा है। एक जगह कहते हैं अनाराधितो राधा पदम भोजरेणुम अनाशित बिंदा कवि तटपदाकम असंभाष्ट तद्भाव गंभीर चीतानाम कुतः श्याम सिंधो रसास्या होगा। श्यामा और श्याम के रस में कौन डूब सकता है, जिसने राधा जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया वो लोग कभी नहीं डूब सकते। जिन लोगों ने राधा जी की पदांक भूमि वृंदावन ब्रज भूमि है, राधा कुंड श्याम कुंड इत्यादि हैं, उन स्थानों का आश्रय नहीं लिया, वहां पर रह करके भजन नहीं किया, और जो लोग राधा जी के प्रेम में डूबे हुए हैं, जिनकी मति जिनका हृदय जिनकी आत्मा सर्वस्व राधा जी के प्रेम में सराबोर है, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं किया, राधा जी का महिमा क्या समझेंगे, रस क्या चीज है क्या समझेंगे, मनोविनोद केवल होगा। इसलिए जब तक कि राधा जी की आराधना नहीं होगी तब तक उनको समझना बड़ा भारी कठिन है। नारद जी जब ब्रह्म रुद्र को नारद भीष्म मुख्यादि, जब नारद ब्रह्मा सूप सनातन जी सनत कुमार जी यही लोग कृष्ण के परसोत्तम भाव को नहीं जानते जो यही परम तत्व हैं और उनकी कृपा को नहीं पाते, तो कृष्ण की जो आराध्या देवी जो राधिका हैं उनकी शक्ति सर्वस्व है, ह्लादिनी शक्ति है, उनको कौन जान सकता है। इसलिए राधा जी की कृपा के करुणा के बिना इन सब तत्वों को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि पहले कृष्णचंद्र जी इस प्रेम को जगत में प्रकाश करने के लिए अपनी ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका जी के साथ में ब्रज में पधारे। आप लोग जानते हैं कि ये गोकुल में कैसे जन्म हुआ, मथुरा में जन्म उनका बाद है। बाद माने है हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं, मथुरा में उनका जन्म कदापि नहीं हुआ, नारायण जी का कृष्ण के रूप में आविर्भाव मात्र हुआ, जन्म नहीं। 16 वर्ष जैसे नव युवक किशोर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लिए हुए, बड़े बड़े लंबे के सोने के अलंकारों से भूषित मथुरा भूमि में आविर्भूत हुए, जन्म नहीं लिया, गर्भ से नहीं हुए यशोदा देवकी के। किंतु ठीक उसी समय में जिस समय कृष्ण का आविर्भाव हुआ मथुरा के जेल खाने में कंस कारागार में, उसी समय देवकी के गर्भ से गोकुल में कृष्ण जी का जन्म हुआ। और वहां पर बधाइयां बाजी, वहां पर नार कटी, जात कर्म हुए, दान इत्यादि दिया गया, उनके घर में बधाइयां बजी, ये सब मथुरा में नहीं हुआ। ठीक इसी के 15 दिन बाद ब्रज में रावल में आज बधाई बजी, अष्टमी के दिन में, उधर में जन्माष्टमी कृष्ण के लिए और उधर में रावल गोकुल के पास में ही, बरसाना में नहीं, बरसाना में बधाई नहीं बजी, बजी कहाँ, नंदगांव में नंद बाबा की बधाई नहीं बजी, गोकुल में बजी। उस समय नंद बाबा सब परिकर आए थे गोकुल में और वहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ। और उसी समय में उनके मित्र आए थे वृषभानु महाराज रावल में, रावल माने होता है राजा जैसा भाव, वृषभानु जी रावल हैं, नंद बाबा को 9 लाख गाय हैं और वृषभानु महाराज के 11 लाख गाय हैं, वो नंद बाबा से कम नहीं, 2 अंगुल बल्कि बड़े हैं, जहाँ पर श्रीमती जी वहाँ पर आविर्भूत होती है। अष्टमी के दिन में 15 दिन बाद कृष्ण से छोटी, कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण से बड़ी हैं, ऐसा मत समझना कभी भी। वो रावल में एक जमुना में जहाँ पर कमल के फूल खिले हुए हैं, उन कमल के फूलों पर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के करीब एक सुंदर बालिका खेल रही थी, नंगी, कभी अपने पैरों को चूसती, कभी हाथ पैर को हिलाती, बड़े किलकारियां मार रही थी। उसी समय में वृषभानु महाराज स्नान करने के लिए आए और इस बालिका को देख करके मुग्ध हो गए, स्नान किया और बालिका को अपनी गोदी में ले लिया और राजभवन में ले गए और कृष्णा मैया की गोदी में दे दिया। तात्पर्य क्या, राधा जी किसी के योनि से गर्भ नहीं लेती, वो ब्रजलोक में वृंदावन गोलोक वृंदावन नित्य राधा कृष्ण की सहचरी हैं, उनकी ह्लादिनी शक्ति हैं, जब जब आवश्यकता होती है जगत में प्रेम धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रेम की महिमा दिखलाने के लिए, वो जगत में अपने स्वामी कृष्ण के साथ में नित्य वहां पर पधारती हैं। कोई कहते हैं जन्म हुआ सब ठीक है, किंतु राधा जी का कृष्ण से विवाह नहीं देखा जाता। अरे यदि कोई किसी की बंबई में शादी हो गई और वो चला गया कहीं कलकत्ते में चला गया, तो उसको फिर शादी करने की जरूरत होगी, तो जरूरत है कि वहाँ के लोगों को दिखलाने के लिए फिर वहाँ पर शादी कर ले, और फिर उसका ट्रांसफर हो गया दिल्ली में, तो दिल्ली में फिर शादी रचाओ, ये तो ठीक नहीं। इसलिए गोलोक वृंदावन में जब उनकी नित्य ही उनकी हैं, जिनका आदि नहीं है, वो सबकी आदि हैं, कृष्ण के हृदय की हृदयेश्वरी अधिष्ठात्री शक्ति हैं, कृष्ण में जो कुछ शक्ति देखते हैं, जो कुछ रस देखते हैं, जो विचार प्रवाह देखते हैं, ये राधा जी का है, कृष्ण की केवल इच्छा है और बाकी सब काम ये राधा जी का है। इसलिए वहाँ पर अवतरित होती हैं, यदि राधा जी उनके साथ में नहीं आती तो कभी भी ब्रज प्रेम नहीं होता, लोग प्रेम की महिमा नहीं समझते। विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिले तनु, राधा जी का भाव और उनकी कांति लेकर के कृष्ण ही अपने को जनाने के लिए, राधा जी को जनाने के लिए, ब्रज को जनाने के लिए, ब्रज भाव क्या है, स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में सचिनंदन गौरभवि के रूप में आए। राधा जी क्या तत्व हैं, यदि ये लोग नहीं आते हम समझते कि राधा जी एक नायिका थी, कृष्ण एक नायक थे, उनका प्रेम पवित्र नहीं था। कृष्ण आए, गोपियों को बुलाया नृत्य करने के लिए, रास करने के लिए। उनको क्या अधिकार था कि दूसरे स्त्रियों के साथ में रमण करें और उनके साथ में नृत्य गान करें, ये तो मर्यादा की हानि है। स्वयं भगवान होकर के मर्यादाओं को कैसे तोड़ेंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो ये भाव नहीं होता। राधा जी क्या है, हलादिनी शक्ति है, हलादिनी है क्या, ये कैसे समझेंगे। सबसे पहले प्रेम का विकास होता है श्रद्धा से। हम श्रद्धा ही नहीं जानते हैं तो राधा जी कहने से क्या हो जाएगा। राधा को अच्छी की तत्व जान करके और तब इस विषय में हमारा कुछ प्रवेश करना उचित है। इसलिए ब्रज में राधा जी कृष्ण के साथ में अवतरित हुए। नारद जी खोज रहे थे, गोकुल में गए, देखा जी कृष्ण जब प्रकट हुए तो राधा जी इनकी शक्ति जरूर कहीं होंगी। घूमते घामते बरसान वहां गए रावल में और पूछा वृषभानु महाराज से, आपको कोई संतान हुई है। उन्होंने कहा जी हाँ, मुझका एक लड़का है, दिखलाए तो श्री राम जी को दिखलाए, आशीर्वाद दिया। और कुछ संतान हुई, हाँ अभी रात ही में हमको एक कन्या हुई है, जरा दिखलाएंगे तो जरूर दिखलाए। उनको घर में ले गए राजभवन में और नारद जी ने देखा, अरे यही तो हलादिनी शक्ति जी हैं। बस झट उनको कहा कि जरा गंगा जल जमुना जल ले आओ, पुष्प ले आओ, दुर्वा घास ले आओ, चंदन ले आओ, मैं इसका नक्षत्र और राशि दे करके इसका नामकरण और इसके संबंध में जो कुछ होगा मैं करूँगा, जल्दी से जाइए। ऐसा कह करके उनको बहाने बना करके वहाँ से हटा दिया और स्वयं श्रीमती राधिका जी की स्तव स्तुति करने लगे। इतने में उन्होंने सुंदर रूप में दर्शन दिए। दर्शन देने पर किशोरी के रूप में, जैसा कि ये चित्र है साधारण रूप ऐसा ही समझिए, ऐसे भावना में उन्होंने दर्शन दिए, देखते ही मुग्ध हो गए। इतने में ललिता विशाखा जी इत्यादि वहाँ पर उपस्थित होकर के कहने, अरे जल्दी से स्तव करो नहीं तो अभी ये अंतर ध्यान हो जाएंगे। कहते कहते ही यहीं स्तुति आरंभ किया, इतने में अंतर ध्यान हो गई। फिर वो राधा कुंड के समीप में गोवर्धन में गए और वहाँ जाकर एक नारद कुंड है, लाखों कोटि बरस तपस्या किया, इसके बाद में मिली कि न मिली कहीं लिखा नहीं। जब ऐसे नारद जी के लिए अगम्य हैं सुखदेव गोस्वामी जी और ब्रह्मा इत्यादि के लिए ये अगम्य है, उनकी चरण रेणु की कृपा से ही सब कुछ जाना जा सकता है। जिसने राधा जी की आराधना नहीं की वो कृष्ण तत्व को भी नहीं जान सकते। एक विशेष बात है, हमने कहीं कहीं सुना, लोग गाते हैं राधे राधे कृष्ण मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। अच्छा तो किसकी महत्ता अधिक हुई, राधे राधे साधन हुई और साध्य क्या हुआ, कृष्ण से मिला दो। कृष्ण को तुम किस लिए चाहते, महिलाएं कृष्ण को किस लिए चाहती, अपने भोग के लिए, यह गलत बात है। ऐसा नहीं, राधे जी ही आराध्य है ऐसा समझें। साधारण एक साधन स्थिति में ही सारे भोग समाप्त हो जाते हैं, उनको आत्मज्ञान हो जाता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सदा के लिए दूर हो जाता है। शरीर में अंगता और ममता की बुद्धि नहीं होती, मैं कृष्ण का दास दासी हूँ ऐसी बुद्धि आ जाती है साधन अवस्था में ही। तो सिद्ध अवस्था में ऐसी भावना नहीं रहती, वहाँ पर तनिक भी भोग की कोई कामना नहीं होती है। यहाँ तक कि सारी कामनाएं परमार्थ में सब कुछ को छोड़ देना पड़ता है। राधिका जी का स्वरूप ऐसा ही है। आदौ श्रद्धा, पहले साधु श्रद्धा होना चाहिए, ये सत्संग में ये श्रद्धा मिलती है। सत्संग श्रद्धा के बाद में ये सदगुरु पदार्थ से होना चाहिए, जो राधा जी के प्रति समर्पित हो, उनकी आराधना करने वाला हो, कृष्ण तत्व राधा तत्व को जानने वाला हो, भक्ति तत्व को जानने वाला हो, संसार से परम विरक्त हो, सुखदेव गोस्वामी जैसे, नरक गोस्वामी जैसे, और समस्त शास्त्रों का तात्पर्य जानने वाला हो, ऐसे गुरु को सद्गुरु करके तब हम जब आगे बढ़ेंगे तो भजन करते 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 सबसे पहले गुरु दीक्षा होगी, उनके अनुसार में चलेंगे आगे तो वही हमारे अनर्थ सब दूर होंगे, तब निष्ठा आएगी। निष्ठा आने पर, प्राण जाने पर भी कृष्ण का भजन नहीं छोड़ सकेंगे। अब यही आगे बढ़ने पर रुचि, आसक्ति, इसके बाद में भाव, भाव तक साधन खत्म, साधन समाप्त, इसके बाद में प्रेम, प्रेम होने पर ब्रज में कहीं गोपियों के घर में जन्म लेंगे, और इसके बाद में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव होगा। महाभाव अद्भुत दशा है, ये राधा जी का स्वरूप जो है महाभाव से बना हुआ है, और कुछ नहीं। कैसे कृष्ण की सेवा हो, कैसे कृष्ण प्रसन्न हो, बस इसी से उनका सारा स्वरूप बना है, इसलिए उनको ऐसा प्रसन्न करने वाला कोई नहीं जैसा कि राधा जी है। इसलिए राधा जी का स्वरूप ही कृष्ण की सेवा की वासना है, बना है। इसलिए समस्त शास्त्रों में राधा जी की बड़ी महिमा का गुणगान किया है। इसलिए एक जगह कहते हैं, यद्यपि किशोर किशोरी जी जगत में पधारे हैं, एक छोटी सी लौकिक लीला जैसी उनकी लीलाएं में से एक मैं यहां पर उद्धृत कर रहा हूं। राधा कृष्ण को कभी भी जगत का कोई नायक नायिका मत समझेंगे, गोलोक वृंदावन के सर्वाराध्य उनको समझेंगे, यहां तक कि राम, नृसिंह, कल की बावन सब उनके अंशों के अंश हैं, कला हैं। जबकि ब्रज में पधारे, आप लोग गोवर्धन जानते हैं, गोवर्धन में दान घाटी है, वहीं पपासी में मानसी गंगा है, वहां पर कभी श्रीमती राधिका जी कुसुम सरोवर से कुछ पुष्पों को चयन कर रही, इतने में कृष्ण अपने सखाओं के साथ में वहां पर उपस्थित हुए। यहां हमारे वृंदावन को हमारा राज्य है, इसको कौन रोज पुष्पों को चोरी कर लेता है, हमारे वृंदावन को उजाड़ देता है। आज मैंने चोरी को पकड़ लिया, आज मैं देख रहा हूं कि तुम लोग ही चोर है। गोपियों ने कहा, आप तो परम धर्मात्मा हैं, हम लोग चोर हैं, किसकी हम चोरी कर रहे हैं, वृंदावन किसका है? उन्होंने कहा, जो मेरा है। गोपियों ने कहा, जो तेरे बाप का है, ये वृंदावन वृंदावनेश्वरी बिंदा जी का है, उन्होंने राधा जी को ये बाण समर्पण कर दिया है, तुम लोग झूठ बोलती हो। कृष्ण ने, श्रीमती राधिका जी ने कहा, जे आप तो सत्य की मूर्ति परम धर्मात्मा है, कैसे हम जानती हैं, कैसे बचपन में ही पुतना नाम की एक स्त्री को आपने पान पीने के बहाने आपने मार डाला, वहां से आपकी धार्मिकता आरंभ होती है, आपका जन्म ही होता है आरंभ एक पूतना को मारने के लिए, जो माता बन करके आई उसको आपने मारा। जब कुछ बड़े हुए तो गोपियों के घरों में छाछ और दही और मक्खन चोरी कर दे, ये आपका धर्म का दूसरा अनुमान। इसके बाद में और जब बड़े हुए तो हमने सुना है कीर घाट पर गोपियां कपड़े रख करके स्नान गई, ये कौन धर्मात्मा का काम है कि उनके कपड़ों को उठा करके ले करके और कदम्ब के ऊपर में उठ जाए, और भी कितने गनाया जाए आपके धर्म को। इसलिए वाद विवाद में राधा जी ने कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। यहां पर ये है, यद्यपि ये लौकिक लीलाएं देखती हैं, रास लीला लौकिक सी देखती है, कोटि कोटि वर्षों की आराधना के बाद भी ये चीजें नहीं होती। गोपियां सहज नहीं है, कृष्ण की लादिनी शक्ति की प्रकाश है। साधारण जो गोपी के लिए बनने के लिए जो कि प्रयास किया, आराधना किया, दंडकारण्य में 7,000 ऋषि गोपाल मंत्र से कृष्ण की आराधना कर रहे थे। रामचंद्र जी को देखा, रूप में कुछ साम्य है, देख करके ही उनको भजन में और प्रवृत्ति बढ़ी। राम को सोचा, यही हमारे पति हैं और हम लोग इनकी आराधना करें गोपियों के भाव से। रामचंद्र जी ने कहा, इस जन्म में नहीं, तुम लोग कृष्ण जन्म में आना, वहां पर तुम लोग गोपी होना और उस समय तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण किया जाएगा। इसी तरह से ही कितने लोग लाखों कोटि बरस तक आराधना करके भी गोपी होना बहुत मुश्किल है। इसलिए गोपियां कृष्ण की स्वरूप शक्ति की प्रकाश हैं। कुछ लोग ऐसी ही स्तुतियां वेद सब गोपी भाव से आराधना करने की चेष्टा की, उनको मिली कि नहीं ऐसी भावना मैं नहीं जानता। लक्ष्मी जी के लिए भी लिखा है, इसलिए गोपियों का पद बहुत ऊंचा है। उनमें श्रीमती राधिका जी कृष्ण की हृदयेश्वरी हैं और उनकी आराध्या प्रकट होते ही कृष्ण की तरफ में दौड़ी आराधना पूर्वक बड़े प्रेम से ले लिए, उनका नाम हो गया राधा, क्योंकि वह कृष्ण के द्वारा आराधित, कृष्णेन आराधिता, कृष्ण स्वयं भगवान परब्रह्म और वे जिनकी आराधना करते हैं वो राधा जी हैं और राधा जी उनकी आराधना करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। श्रीमद् भागवत में इनकी लीला का बहुत कुछ वर्णन किया गया है। रासलीला वह है जिसमें कृष्ण राधा जी को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए रास छोड़ दिया। समय नहीं है अधिक बतलाने का राधा जी के महिमा का।